सचेतमत्र स्वरूपम तस्याग्रजोरिमाखुरिं दोष्टवादी राधाकुण्डं गिरिवर्महो राधिका माधुवासं प्राप्तो यस्य पथिकृपया श्रीगुरुं तं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषु गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते शरणार्थ वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्न अपायन्मानुभेत्सु मन्दं कृपाम्बुगिर्य परदुःखदुःखे संहतं तं प्रभु ये चौकी हमारे लिए असुविधा कर शांति रहे हम लंबी रहे
चौकी है
मैंने ये ऊंचा होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर ले सकते नहीं तो ये पुस्तकों को ऐसे रखो यहाँ रख करके हम देखेंगे कैसे अगली बार बताएंगे अगली बार जब हम इस विश्व में आएंगे तब कृष्णा घर के बाहर कृष्ण के भीतर घर के भीतर रुक्मिणी जी के पलंग पर मुख ढक कर सो रहे हैं और वो नहीं रहता तब वो हमारी चौकी पर की है हमारे ही चौकी ले आए जो हम लिखते हैं तो कृष्ण घर के भीतर मुख ढक कर पीताम्बर से सोने का भान कर रहे सो नहीं रहे और बाहर दहली के ऊपर उद्धव नारद जी रुक्मिणी जी रोगी मैया सत्यभामा इत्यादि वहां पर परस्पर बातें कर रहे हैं उद्धव जी ने जब गोप और गोपियों की महिमा बतलाई उसे सुन करके रोहिणी मैया बड़ी दुखी होकर के जो कुछ कहा मैंने कल बतलाया बड़ी शोक में आर्त्र होकर और कृष्ण को निष्ठुर बेदर्दी इत्यादि बतलाया यहां तक कि ये बतलाया कि कृष्ण का हृदय वज्र से भी कठोर है ब्रजवासियों की बात को मैंने बतलाई इनको उसे सुनकर और यशोदा मैया का बिलाप सुनकर पत्थर और वज्र भी पिघल जाता किंतु तुम्हारे प्रभु का हृदय नहीं ग्रहित इतना सुनते ही परीक्षित महाराज माता जी बहुत विकार है सुना रहे हैं अब सावधान होकर के सुनना और यदि मैं अचेत हो जाऊं तो तुम हमें सचेत भी कर, और स्मरण दिलाना जो मैं क्या कर रहा हूं। देखो इसके बाद मैया की बात को सुनकर तत्सुत्वा दुष्ट कंसस्य जननी भ्रष्ट चेष्टिता जराहत विचार सिरह कंपयत अप्रवृत्त। प्रचंड कहा जरूरी मैया की बातों को सुनकर जो कृष्ण के प्रति उन्होंने कटाक्ष के द्वारा उनको वज्र से भी कठोर हृदय वाला बतलाया, उसे सुनकर रोहिणी मैया जी की बात सुनकर के दुष्ट कंसस्य जननी और जराहत अत्यंत वृद्धा विचार विवेक रहित और भ्रष्टाचरणी मैंने अपने पति को छोड़कर के ध्रुंज दैत्य से जिसका कंस रूपी दुष्ट पुत्र पैदा हुआ, दैत्य जैसा ध्रुंज जैसा, और दुष्ट कंस जो कृष्ण को मारने के लिए बाल अवस्था से मथुरा पहुंचने तक जिसने सारी चेष्टाएं की असुरों को, वो दुष्ट वो धूमिल दैत्य का पुत्र होने, और उसकी ये माता पद्मावती सिर कपाती हुई वृद्धावस्था के कारण और कुछ रुग्णी के प्रति क्रोधित हो और कहने लगी तीन विशेषण यहां दिया, दुष्ट कंस की मैया भ्रष्ट चेष्टिता और जराहत विचार रहित, तीन बदलाए बुद्धि रहता नहीं तो ऐसे कैसे रोहिणी मैया जी के बात को सुनकर के उसे क्रोधित हो जाती, वो मूर्ख थी, बल्कि प्रेम भाव रही। किंतु इस चीज को समझो, ये जोग माया की क्रीड़ा है गुण रस से, क्या वो यदि इस प्रकार का आचरण नहीं जोग माया उसके द्वारा करती तो लीला की पुष्टि नहीं होती। ब्रज में मथुरा मंडल में कोई भी अशुभ प्रवेश नहीं कर सकता, तो इस ब्रज में अगासुर बकासुर कूतना इत्यादि सब कैसे घुसे, और मथुरा भी त्रिलोक से न्यारी है, यहां पर तो कृष्ण सब सुन रहे थे, वहां पर दुष्ट कंस कैसे आ सकता है। ये गोपियों के प्रेम की प्रेम के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल रूप में अनुकूलता करता है। कैसे अनुकूल करता है, यदि वो नहीं रहते तो कृष्ण की ब्रज की लीला ही नहीं होती। इसलिए जोग माया उसके द्वारा कृष्ण के लीला की पुष्टि के लिए प्रतिकूल रूप में ये सब चीजें कर रही हैं। बोली क्या, सिर कपाती हूं, रे रे सप्तभामा रुक्मिणी, अरे दुर्बुद्धि रोहिणी, उनको ही दुर्बुद्धि बतला रही, बड़े दुख की बात है। ओहो अहो पचित तेषां गोपानां कृपावतां आबाल्यात् कंटक कंटकारण्य पलायमानो गोगणान। बड़े दुख की बात है, ये अच्युत अच्युत कृष्ण लिए प्रयोग है, किंतु अच्युत कहने का भी एक तात्पर्य है, वो पीछे बदला है। बाल्यकाल से कंटक भरे वन जंगल में गोयों को पीछे पीछे गोगनों को चराने के लिए, गौओं को चराने के लिए ये अच्युत उनके पीछे पीछे रहता, सारा दिन भर बाल्यकाल से मैंने, कहने का तात्पर्य ये है कम से कम तो 8-10-12 वर्ष का होना चाहिए, तब तो वो गोचारण के लिए जाएगा। किंतु बाल्यकाल से ही, अभी उम्र नहीं हुई, 5-6 वर्ष की उम्र से ही गोचारण में जबरदस्ती लगा दिया। उस समय दुधमुक्का बच्चा गोदी में रख करके प्यार करने योग्य होता है। और निष्ठुर गोप गोपियों ने, निश्चित जसोदा और नंद ने और उनके परिवार ने इस छोटे से दुधमुक्के बच्चे, कोमल बच्चे को भी, इन गैयों के पीछे, गैयां कैसी है, चलते चलते वो कंटकारण्य देखती है जो कहां कंटक है, कहां क्या है, कहां नदी है, नाला है, वो तो जहां घास देखेंगी छलांग मारते हुए वहीं पर नोकीले पत्थरों पर उनका खुर बना हुआ होता है, उसमें नहीं चुभता, काटे भी नहीं चुभते। और ये कंटकारण्य में बन गए, जहां तहां दौड़ती हैं और उसके पीछे पीछे ये चंपा, और वो भी कैसे, वो भी कैसे, ओ सवेरे का निकला, वो भी तो ये तो खिलाएंगी नहीं गोपियां, कहीं घर से यदि मक्खन चुराया तो और विपत्ति है, और वही भूखा बेटा बच्चा गायों के पीछे छोड़ दिया, ये दिन भर जूता नहीं दिया, छाता नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आगे बतलाएंगे। तो ये बाल्यकाल से ही कृष्ण यदि जूता लेकर के नहीं चलता है, चप्पल जूता, तो पाए में नकुले पत्थर और कंटक लगे जरूर। एक बार हम लोग परिक्रमा करते 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 ब्रजमंडल की पैदल परिक्रमा करते करते 300-400 आदमी व्यक्ति ये पैठा जानते हो, पैठा इसके बाद विमान सरोवर, चंद्र सरोवर, वहीं से सीधा रास्ता है गोवर्धन का, पास ही में है, और रसौली पड़ती है और उसके पास ही में वो अन्नोर ग्राम है। पैदल हम लोग चले जल्दी से शॉर्टकट के लिए, और गोखुर के कांटे पैर में लगे और टूट जाए निकले नहीं, बड़े कांटे हो तो निकल जाएंगे, और वो गोखुर कांटे इधर उधर चारों तरफ लग जाते पैरों में और निकलते नहीं और टूट जाए, रात भर कष्ट, दिन भर कष्ट, जब तक ना निकले, और निकालना भी बड़ी सुई से, बड़ा मुश्किल। तो ऐसे ये कृष्ण को गायों के पीछे पीछे चराने, जूता भी रहता तो भी एक बार, वर्षा हो, ठंडक हो, चिलचिलाती धूप हो, किंतु जाना पड़ेगा, घर में नहीं रहने देती, गायों को कौन खिलाएगा, इन्हें घर से बाहर कर देती। यदि देर हो जाती तो कहती अरे सवेरा जागो तो उठो उठो उठो, गैया चराना है और गैया वहां पर जा रही है और सखा लोग तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर। अच्युत किसलिए कहा, अच्युत कहने का कारण है कृष्ण कभी भी अपने स्वभाव से चुप नहीं, बाल्यकाल में यदि उनको गोचारण में लगा दिया तो गोचारण करते रहे, वो दुख कष्ट नहीं देते हैं, उनको खुश करने के लिए वो अपने स्वभाव में रह करके वो गैया चरा ही रहे हैं। ये नहीं कहेंगे हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तरह तरह के बहाने खोज करके। और पद्मावती जी इस प्रकार से गोपियों के प्रति ऐसे वचन कह रहे, और तो क्या, आक्रोशम तिचर तद दुखम काल गतैव कृष्ण सर कृष्णेन सोढ़ मधुना किं कर्तव्यम वतापरम। अब ठीक, और तो क्या, यदि गोचारण से पहले या और बाल्य अवस्था में यदि कृष्ण को भूख लगी, मैया ने तो कुछ दिया नहीं जसोदा ने घर में, और उनको लगी भूख तो किसी पास की गोपी के घर में मक्खन चुराने पर विवश हो गए, इसलिए उनके घरों में जब घुसे तो गोपियां, अरे ये चोर आया चोर आया, चिटका कर उठती थी, हल्ला बोल देती थी, हल्ला कर आया चोर पकड़ो पकड़ो। और ये बेचारा क्या करता, छोटा सा बच्चा, उसको वो पकड़ लेते और कभी कभी उसको पकड़ करके ले आती यशोदा मैया की यहाँ आलू, वो उलहना देने की, तुम्हारा बेटा चोर है चोरता है, हमारे दधी सब खा गया मट्ठा खा गया, अरे खाएगा भी तो कितना छोटा सा बच्चा, उनके घर का सब मक्खनी खा जाएगा, ये लांछना लगा रही चित्कार करो। कभी कृष्ण गए और वो गोपी छिप करके देख रही थी, ये चोर आएगा उसने पकड़ लिया, हाँ ये ब्रज की बातें उसने सुनी कहीं से सुनी है ना, इसलिए वो थोड़ी सी जानती है, तो उनका हाथ पकड़ लिया, कहते थे मैया मैया मुझे छोड़ दो, मैया रे मुझे छोड़, हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, और वो ऐसी निष्ठुर गोपी हाथ छोड़ी, कहे तू चोर के चोरी करने क्यों आए। कृष्ण मुस्कुराते हुए रोते हुए उनसे गिड़गिड़ाते हुए पैरों में गिरते हैं, छोड़ मैया अब नहीं आऊंगा, अब तो ये छोड़ती नहीं, और कोमल उनके हाथ और जरे कस करके पकड़ लिया निष्ठुर गोपी। कभी कभी वो यदि पकड़ लिया तो उसको पकड़ करके ले आई यशोदा मैया की, हाँ कैसा बेटा है तुम्हारा, ये किस प्रकार का चोर अभी से निकल रहा, चोरी करता है और सीना चोरी भी करता है, हाथ छुड़ा करके भाग जाता है, तरह तरह की ये लंचना है। ये कृष्ण की बाल लीलाओं को उलाट करके ऐसा कर, और बाकी सर्वत्र यशोदा मैया के हैं कि वहां पर तो गोपियां सभी जुटती कृष्ण का दर्शन करने के, तो कहें कि नहीं वो जुटती नहीं थी, कृष्ण के प्रति उलाहना देने के लिए वो सब आती थी, इसलिए बड़ी भीड़ रहती थी। काल गति ये वो अभी उनको कुछ करना है, नंद वो दुष्ट कंस से बचना है इसलिए काल गति, अथवा जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं इसलिए काल गति, विवश होकर के उनको ये सब कुछ सहना पड़ा बहुत दिनों तक, विवश होकर के दुख को भी इतना दुख होने पर भी सह लिया। तुम लोग भी बोलो, अब ब्रजवासियों के प्रति वो क्या उनके लिए कुछ करेंगे सुख के लिए, इतना तो बचपन में से ही और अब तक गैया चराया और ना जाने उनके घर के कितने काम किए और उन्होंने खिलाया पिला भी नहीं, तो कृष्ण उनके लिए क्या करेंगे, तुम लोग विचार करके देखो। नो यू सुटल अदरवाइज यू विल बी लॉन्ग।
So, Srila Gurudev, please continue with the explanation of Sri Vrindavanamritam of Srila Sanatana Goswami Pada. At this time, Krishna, he is inside the house, he's lying on the bed in the palace of Rukmini Devi, and he's covered his face with cloth, and he's sleeping. Uddhava, Narishi, Rukmini, Rohini Maya, Satyabhavan, others are there and they're conversing with each other. When Uddhavji explained about the glories of the gopis, at that time, Rohini, she became upset. She began to lament and complain that Krishna was very cruel. This katha he heard yesterday. She was saying that, moreover, Krishna's heart is harder than thunderbolts. Because when Madhya showed up, she's weeping in separation. Even storms melt, even thunderbolts melt. But your Prabhu, she's telling to put up, your Prabhu's heart is not melt. So at that time, the mother of Kamsa, her name is Padmavati. So she was hearing and she became angry. What is the nature of Padmavati, the mother of Kamsa? She is very old. And she has no intelligence. She has no power, proper power of discrimination. And she is a bad character. Why? Because leaving her husband, she met with one demon called Drumil. And by the meeting of Padmavati and Drumil, she conceived the son, and that was Kamsa. So she's hearing what Rohinimaya is saying, but she cannot understand. One way or another, she'll become angry because she has no love at all, no praying bhav towards Krishna. So, how is it possible that in the association of these personalities, this wicked person will come? Would have explained, this is the arrangement of Yoga Maya. This is the play of Yoga Maya for the sake of Lila Pushti, for nourishing the Leelas. In Brajamanda or Mathuramanda, no demon can come there. No demon can enter. So how is it that Agassu, Bhagassu and others came to Brajamanda? How is it that Kamsa came in Mathura? Why? Because Yoga Maya arranges some unfavorable circumstances. And these unfavorable circumstances, they actually nourish the Leela. So they're very cool for the Leela. So then, Padmavati, the mother of Kamsa, said, hey, Dhrupadi Rohini, or Rohini, you're not very intelligent. You have bad intelligence. Why are you saying all of these things? You know that Krishna, she's using the word Achyuta to address Krishna. Krishna, from his childhood, he used to go out and graze cows in the jungle which is full of thorns all day. And he used to do it from the time of his childhood, Bali Lila, in his very small childhood. It may be satisfactory, it may be acceptable if a person, a child is 10 or 12 years old and they go for cow grazing. But she said, no, just see these bright grasses, they are very cruel. Oh, from the age of 5, when he is very, very small, they used to make him go and graze cows by force. So they are so cruel. Both goats and gobies and Mother Yashoda, they would force this soft baby to go out. And he would have to follow the cows. What is the nature of the cows? The cows have hard hooves, and in their search for grass, they never care when they're training. They may be going over very pointed stones or sharp grass and thorns, but they'll just go there anyway. And Krishna, being a very small and soft child, he had to follow them. And they would force him to graze the cows all day, from very early in the morning. And they would make him go out early in the morning without giving him anything to eat. So therefore, Krishna would feel hungry. And he had no other option. He had to go house to house and steal some butter, just to stay alive. The goats of Braj, they would not give him any shoes. They would not give him a parasol to cover himself in the very intense heat. They would not give him anything. You know that if you go into the forest, there are many mushrooms and thorns, so they must go into your feet. Srila Gurudev gave an example once on Parikrama. The Parikrama party came to Chandra Sarovar, and from there they wanted to go to take a shortcut from Chandra Sarovar to Anipo. So when they went on the shortcut, there were so many thorns and so many brambles. And when these thorns were inside the feet, it was very painful. And not only that, they would go inside and then break off, so you could not get them out. It was very, very difficult. So Srila Gurudev was giving this as an example. If this small child is wandering in the forest, then you have to undergo all of these very intense difficulties. Padmavati is complaining, Krishna, in any way, in any condition, he would go cow grazing and he would follow the cows. He would have to go out in heavy rain, he would have to go out in the freezing cold, in the intense heat, where every day he had to go. They would wake him up in the morning, get up and go, you should go at once. Krishna could not even take proper rest, proper sleep. And he used to go. And what is his nature? He did not complain. He never told anyone, I'm not going. And therefore, Padmavati addressed Krishna by the name Achyuta. You know, the devotees, very lovingly, they use this word Achyuta for Krishna. But Padmavati uses the first word Achyuta, why? To criticize the great classes. How they were forced him to go every day. And he was so controlled by them. Being a small child, he would never tell them, I'm not going. He was infallible. He would go out every day doing this. So, if he would go, before going on cow grazing, they were not giving him anything to eat. So he's very, very hungry. And he had no other alternative. He had to go and take water from the other houses. But what would happen? Even though this child being very innocent and only trying to take something to eat, if a gopi would catch him, they would make a complete uproar. And they would announce and advertise his thievery everywhere all over Braj. They would catch him and they would grab his small and soft hand very, very tightly. It was painful for him. And they would take him from to Madhya Yashoda. And at that time, so many gopis would come and complain about him that there was a big crowd in Madhya Yashoda's house. And Krishna, he would fall at their feet, he would beg them with folded hands, but still they were very cruel, and they would go and announce, what kind of son do you have? He's a very bad character. He's a thief. And accused Krishna and complained to Madhya Yashoda in this way. So in your time, rich bastards have done so many things for the happiness of Krishna. But actually, this is not true. So this was the perspective of Padmavati, the wicked mother of Kamsa, on the words of Rahimanaya.
परिच्छेद उपात प्रज्ञा गांभीर्य पूर्ण रोहिणी ब्रजवल्लभा तस्या व्याक्तिम अनादृत्य प्रस्तुतम संसृणोति रोहिणी मैया बहुत बुद्धिमती और गांभीर्य बुद्धि की गंभीर स्वभाव वाली ब्रजवल्लभा ब्रज की जितनी भी गोपियां थी उनको बहुत स्नेह और आदर करती थी ब्रजवल्लभा ब्रज की वल्लभा ये रोहिणी देवी पद्मावती के बात को सुन करके उसका अनादर करके उसके तरफ में ध्यान नहीं दीजिए क्या बक बक कर रही समय नष्ट करना होगा इसलिए वो जो विषय को प्रस्तुत विषय को जो वर्णन कर रही थी बतला रही थी कृष्ण की निष्ठुरता इत्यादि वो उन्होंने फिर बोलना आरंभ किया रोहिणी युवाच रोहिणी मैया फिर कहने लगी क्या कहने लगी राजधानी जदुनांचल प्राप्त श्री मथुरामय हतार हतारी वर्गो विश्रांतो राजा राजेश्वरो भवत कृष्ण मथुरा में पहुंचते ही कंस उनके भ्राताओं को चारण मुष्टिक को और दूसरे दुष्ट लोगों और अंत में मथुरा में रहते हुए जरासंध को कितनी लाखों करोड़ों सेनाओं का संहार किया और अंत में सारी मथुरापुरी के साथ में अब यहां आए और यहां आकर के भीम के द्वारा जरासंध को भी मरवाया पौंड्रिक इत्यादि सबको सबका जो अशुभ स्वभाव वाले थे उनको मार करके भूभारण किया अब शत्रु तो है नहीं और किसी से लड़ना पीना तो है नहीं इसलिए बड़े आसाम के साथ में हम द्वारकापुरी के राज राजेश्वर बने, द्वारकाधीश बने हैं, और साथ ही में उन्होंने 16,108 पटरानियों के साथ में शादी भी। इतना तो पटरानियां है 16,100, इनमें 8 अधिक है, और इनकी दास दासियां भी उनसे कम सुंदरी नहीं है, इसलिए बहुत संख्या में अधिक है। और एक एक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटे और एक बेटी, जिनको पढ़ाने के लिए करोड़ टीचर लोग, शिक्षक लोग नियुक्त हैं, कितने। और इस ऐसे राजेश्वर अब सुख भोग रहे हैं, द्वारका में विश्राम अब कर रहे हैं। भला उनको याद कैसे आए गोपियों के, उन दिनों का याद तो आएगा नहीं। और इस प्रकार होने से जितने लोगों को मारकर कैदी राजाओं को जो भक्त थे उनको छुड़ाया, जरासंध के जेल खाने से उसका पुत्र था सहदेव, जब वो मारा गया तो सहदेव को कहा कृष्ण ने, जितने बंदी राजा हैं सबको छोड़ो। तो वे लोग जब छूटे तो कृष्ण के चरणों में शरणागत। कृष्ण ने कहा अब अपने अपनी राजधानियों में जाओ, और वहां से युधिष्ठिर महाराज जी का राय सुनिए यज्ञ होगा, और उसमें सभी लोग भेंट लेकर के आना। इसलिए वो लोग कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, और जब द्वारका पूर्णिमा तो वही सब राजा आते हैं। पारिजात हरण के समय में एक पारिजात का पुष्प लेकर के यही नारद जी बैठे हैं, बोला जी प्रभु हे द्वारकाधीश, आपकी बहुत सी सुंदरी सुंदरी स्त्रियां, उनमें किसी एक को ये पारिजात का ये पुष्प है आप दे दीजिए हमारे सामने, मैं जानना चाहती हूं कि आपकी सबसे अधिक प्रिया कौन है। तो कृष्ण अगल बगल झांकने लगे, मैं क्या करूं, ये ऐसा ही विवाद कराने वाले, झगड़े लगाने वाले नारद हैं। भाजी नहीं प्रभु, हमको बहुत जल्दी जाना है, जल्दी से दे दीजिए, मैं कि अपने काम में जाऊं। कृष्ण बोले जी मैं क्या करूं, इसको बहुत बहुत कुछ विचार, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो वो जल्दी बाजी में और क्या करें, रुक्मिणी जी पास में बैठी थी, और रुक्मिणी जी को जी और देख करके सत्यभामा को हुआ वहां क्रोध और मान, झूठा मक्का रोज रोज ये कहता है कि तुम ही हमारी सबसे बड़ी प्यारी हो, आज प्यारी हमने देख लिया जी, हमने बस वही अपने पैरों से पृथ्वी पर पटकती हुई को घूमने गई, मैले चले वस्त्र पहन करके थोड़ी देर के बाद देखिए मामला गड़बड़ हो गया। नारद जी ने तो अब झगड़ा लगा दिया। कुछ देर के बाद में कृष्ण वहां गए, देखा जी वो नागिन की तरफ में फुफकार कर रही, कृष्ण ने उसके शरीर पर जमी हाथ दिया, फुफकार उठी, खबरदारी ना बताओ जो तुम्हारी प्यारी है उसके पास में जाओ, उसकी चापलूसी को आने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण ने बहुत वो तो मान भंग करने में बड़े चतुर है, अरे मेरी सर्वोत्तम प्रिया तुम्हारा जो मान देख ले कि नहीं, मैंने किया नहीं तो मैं देता थोड़े, तुम्हारा मान देने के लिए देखने के लिए ये कैसे मान करती है, इसलिए हमने दिया। देखो तुम्हारे घर में हम पारिजात का पेड़ लगा, उसको तय नहीं एक पुष्प दिया, तुम्हारे घर में पारिजात का पेड़ ही ले आएंगे, स्वर्ग से लगा देंगे, रखो रखो मैं नहीं सुना, अच्छा अभी तैयार हो जाओ। और जबरदस्ती उसको गरुड़ को बैठा करके बस उड़े देवलोक में पहुंचे, देवताओं को परास्त करके पारिजात का पेड़ ले आए और उसके घर में लगा दिया, बोले जैसे इस अवसर पर रुक्मिणी को भी निमंत्रण दो, तो रुक्मिणी भी आई ना, क्योंकि वो क्षीर गंभीर है ना, दक्षिण स्वभाव, उसने कुछ नहीं किया और ये उसके लिए। तो ऐसे देवताओं को भी परास्त किया, एक बार नहीं दो बार सुधर्मा सभा लाने में भी उनको परास्त। अब वो देवता कृष्ण की महिमा देख करके वो भी स्वर्ग से आकर के, ब्रह्मा भी, कौन ब्रह्मा, सहस्त्र मुख वालो ब्रह्मा, सहस्त्र मुख कैसे उनके चरण में गिरते। तो ये देवता लोग भी उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, भला कृष्ण को ऐसी दशा में पुरुषत है जब गरीब ग्वाली में गयों के पीछे पीछे दूध दहने वाले उनके उनकी सूद बुद्ध उनको स्मरण रखे, इसलिए बड़े परिताप की बात है। श्री परीक्षित बात ये सब सुनकर के परीक्षित जी बोल रोहिणी जी के वचनों को। वहां उपस्थित रुक्मिणी और सप्तभामा इत्यादि जो कृष्ण की पाठरानियां सह नहीं सकती, सबसे पहले रुक्मिणी जी बोली, अरे मैया तू क्या कर रही, कितने मक्खन जैसे कोमल कृष्ण का स्वभाव और इनको आप निष्ठुर बतला रही। श्री कृष्ण बल्लभा अर्थात दिन रात कृष्ण के साथ में रहने वाली, उनके हृदय की और बाहर की बातें जानने वाली है ये कौन, रुक्मिणी। इसलिए वो बात नपी तुली हुई ठीक कहेंगी, इसलिए उनके हृदय की बात को जानने वाली भीष्मक नंदिनी। क्यों भीष्मक नंदिनी, भीष्मक भी वैसे ही गंभीर बात है, इसलिए रुक्मिणी जी कहने, रोहिणी जी कहने, क्यों इनके नुष्ठ वचनों को वह सह नहीं सकी, ये कृष्ण इतने निष्ठुर हैं हा? और वज्र से भी कठोर उनका हृदय है, इसलिए उत्तर करने के
At that time, when Padmavati, she finished speaking, then what was the reaction of Rohini? Her intelligence is very profound, extremely deep. And all the gopis of Braja, they had great honor for her, they used to respect her. So when she heard the words of neglect and criticism of Padmavati, she did not say anything. She didn't want to waste any time. But rather, she just composed herself and continued to narrate how Krishna was so cruel. She explained how, when Krishna arrived in Mathura, along with Balaram, he killed Kamsa and many other demons. After that, he did battle with so many demonic kings such as Jarasandha, who came with many, many generals and warriors, and he destroyed them all. Not only Kamsa, Jarasandha, also Pandra, and many, many kings who were possessed of demonic nature, Krishna destroyed them all. What was his purpose? To take away the burden of the earth. So then after being Mathura, he became Dwarkadish, the emperor of Dwarka. And there he married 16,108 queens. And among them, 8 are prominent. But even though there were 16,108 queens, all of those queens, they had many, many maidservants. And those maidservants were not in any way less beautiful than the queens themselves. So in this way, Krishna had thousands of consorts. And from each queen, he conceived 10 sons and 1 daughter. So his family became so vast against Rajeshwar, the king of kings. He was enjoying a very leisurely life and so much opulence there in Dwarka. Because all the enemies were finished. So, how is it possible that Krishna, being in this condition, he will remember the Vrijavasis? So, Srila Gurudev is giving so many examples. Do you know that? Jarasandha and Kamsa, they have imprisoned many, many kings. So when Krishna, he killed them, and he married so many queens, many princesses, then he set free all those kings who had been imprisoned. So at that time, when the kings were freed from their imprisonment by the mercy of Krishna, they all fell at his lotus feet, and they surrendered themselves to him, and offered prayers to him. So Krishna told them, you should return to your kingdoms. And very soon, Maharaj Yudhishthira will be performing Rajasuri Yagya. So at that time, when all the many kings of the world, they came to the Rajasuri Yagya of Yudhishthira Maharaj, then they all prayed to Krishna and honored him as the most prominent personality. So this is an example of how Krishna, his position was flourishing and he was so successful after leaving Vrindavan. Also, Srila Gurudev narrated the pastime of the Parijanflower. One day, Narada Rishi, he came to the council of Krishna when he was in the company of Rukmini and Satyavan and so many other kings. At that time, Narada Rishi brought one Parijanflower from heaven and he said to Krishna, oh Krishna, please allow me to receive this benediction that I will see you give this Parijanflower to that queen who is most dear to you. So Krishna, Narishi gave the private flower to Krishna, and now Krishna was in a big dilemma. What will I do? Whoever I give it to, the others will become angry. So he was thinking, what should I do? At that time, Narishi was urging him on. Krishna was in a dilemma because he used to tell all of the queens individually when he was alone with them, you are the most dear one. So now, his words will be uncovered. So Narada was saying, Krishna, come on, don't delay, don't waste any time. I want to see you give this to your most dear one. It's getting late now, I have to go quickly, you should give the flower. So then Krishna, he gave that Parijat flower to Rukmini. And when he gave the flower to Rukmini, Satyabhama became very angry. She was so boiling in rage and stamping her feet on the ground. And she left from that place and went to Koban, that is the anger house. So she got there and she took off her ornaments. After some time, Krishna came there. And when he came and he wanted to pacify Satyabhama, he went to touch her, then just like if a snake is angry, you try to touch a snake, then jump on his head. So Satyabhama was in such a very ferocious mood. Krishna went to touch her and she began to criticize him. Oh, why have you come here? No need for you to come here.
Go to your most dear one.
You should go to that one who is most dear to you. Why have you come here to me? So then at that time, Krishna, he said, oh, why are you becoming upset over one flower? I want to give you a whole tree full of flowers. A whole tree of private flowers. So then Krishna quickly, he took Satyabhama on the back of Garuda and they went to Devalok, to Indralok. And going there, Krishna, he did battle with the forces of Indra, and he captured, he took a whole tree of Parijat flowers and brought it back down to Dwarka and kept it there in the palace of Satyabhama. So that time, all the queens, especially Rukmini, they came and they saw a whole tree of Parijat flowers in the courtyard of Satyabhama. But what was Rukmini's reaction? Did she act like Satyabhama? No. Because Rukmini, her nature is very gambhir. She's a deep heart, and she has Dakshin Swabhav. That means she doesn't have a contrary mood, she has a submissive mood. So she did not say anything. So Srila Gurudev is giving these many examples of how Krishna was flourishing and so successful in Dwarka Puri. Another example, Krishna would be
the Devi, demigods who were defeated by Yusuf. They used to come.
So in the Sudama Sabha, in the assembly house of Krishna, oh, all those demigods who had been defeated by Krishna, they would come and pay obeisances to him there. They would offer prayers. No, not only them, even Brahma, or not our Chattamukha Brahma from this universe, even Brahmas from other universes with thousands and thousands of heads, they would come to the Sudama Sabha, the assembly house of Krishna. They would give Dhanavat Pranam to him, and they would glorify him with so many prayers. So, if Krishna is living in such opulent and flourishing successful condition, how will he possibly remember some insignificant villages, some cowardly people who just spend their time milking cows? He will not remember them. So this is so sad. So hearing these words of Rohini Maya, then Rukmini and Satyabhama, they were listening. And Rukmini, she was the first to speak. She got up, she said, "Oh, Rohini, what are you saying? Why are you saying these things? That Krishna is so cruel?" Rukmini, she stays with Krishna day and night, all the time with him. So it's considered that she knows his character. So she's telling, "You know that Krishna's heart is as soft as butter. But you are saying it is hard as the thunderbolt." Oh, this is not a fact. So then, Rohini, she will begin to refute the suggestions which were given. Sorry, Rukmini will refute the statements of Rohini Maya.
Aba Rukmini Devi. कारण जी क्योंकि वो दिन रात कृष्ण के पास में रहती हैं और उनके हृदय की बातें जानती हैं और ब्रज की भी बातें जानती हैं। ये ब्रज की बातें कैसे जानती हैं? कृष्ण ही उनको बतलाते स्वयं, कभी स्वप्न में और कभी प्रत्यक्ष रूप में गोपियों के संबंध में। इसलिए वो रुका रही हैं। ओ माता जी, आप उनकी कोमल हृदय को न जान करके ऐसा क्यों उनकी विरुद्ध में कह रहे हैं? ये कठोर हृदय के हैं, निष्ठुर है, निर्दय। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं जानती हूं क्योंकि उनके निकट में दिन रात रहती हूं। वे कभी जागृत अवस्था में स्वयं गोपियों की, माताओं की, गायों की और सखाओं की चर्चा करते हैं, ब्रजभूमि की चर्चा करते हैं, और कभी सो जाने पर भी चर्चा करते हैं। वो कैसे, उसी को यहां पर वर्णन कर रही हूं मैं आपको, और इन लोगों को भी प्रकट रूप में सुना रही हूं। मैंने इनको भी नहीं सुनाया, किनको? और जो वहां पर महिषियां हैं, रात्रि काल में जब हमारे आर्य पुत्र सो जाते हैं, वो ब्रज की न जाने कितनी बातें बड़बड़ाते हैं। बड़बड़ाने माने समझते हो, बोलने लगते हैं, भावावेश में सपने देख रहे हैं और उसमें एकदम भावावेश में ना प्रत्यक्ष ऐसा हो रहा है। तो कितनी बातें कहते हैं और बड़े प्रीति भर से। अरे ब्रजवासियों की मैया, नंद बाबा, जसोदार, गोपियों की तो बात ही क्या है, बड़े मधुर स्वर से। अरे कालिंदी, पीशंगी, ओ पद्मगंधे इत्यादि नामों को, बछड़े बछड़ियों को भी नाम रखा है, उनको भी कभी कभी पुकार, कभी अपने सखाओं को, श्रीदाम भैया तू कहां हो, जरा ठहरो मैं आ रहा हूं, मधुमंगल तुम कहां हो। और उनसे जैसे दिल्लगी की बातें करते हैं, सपने में भी उनसे दिल्लगी की बातें करते हैं। और कभी कहते हैं, मैया मुझे मक्खन रोटी दो, तो मैया मुझे मक्खन और रोटी दो। यशोदा मैया कहती है कि देखो तू मक्खन और रोटी नहीं खाता, इसलिए तुम्हारी चोटी मोटी नहीं होती, इसलिए तुम यदि अधिक खाएगा तो तुम्हारी ये मोटी हो जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं, मैया तो मक्खन और रोटी ले आओ, मैं खाऊंगा अधिक और जल्दी से बलवान होगा और चोटी भी हमारी मोटी हो जाएगी। कभी कभी बंसी बजाने का पोज करते हैं, भंगी करते हैं मानो बंसी बजा रहे हैं, सोए सोए ही पैरों को पैर रख करके टेढ़े पैरों से और टेढ़ी कमर और टेढ़े बंसी बजाने लगते हैं कोच कर। बंसी तो है नहीं किंतु हाथ वैसे ही काम करता है। कभी कभी कहते हैं अरे चंद्रावली तुम्हारा कैसा व्यवहार है, मेरे कपड़ों को पकड़ करके ऐसे खींचते हैं और कहते हैं चंद्रावली तुम्हारा कैसा व्यवहार है, क्यों कह रहे हैं। ब्रज की बातें स्वप्न में आती है और प्रत्यक्षवत देखते हैं ये चंद्रावली खड़ी है और कृष्ण राधा जी के यहां से वहां पर पहुंचे हैं और कुछ चिन्ह उनके अंगों में है। तंजावली कहती है यहाँ पर किस लिए पधारे, और बड़ी गंभीर होकर के खड़ी हो जाती है। कृष्ण समझ पाते नहीं है कि यह मान किया है कि नहीं किया, इतनी गंभीर। कहिए तुमने मान किया है, मान किस लिए करूंगी, आप यहां सुखी हैं वहां पर सुखी रहते हैं वहां पर रहिए, हमको इसमें क्या आपत्ति हो सकती। गंभीर इतनी मान है भीतर में गु किंतु छिपा कर। कभी कृष्ण आए बोले जे राधिके तू कैसी है, तुम्हारा कुशल तो है। तो वो रुक्मिणी कौन चंद्रावली क्या कह रहे, हे कंस महाराज आपका कुशल तो है। तो कृष्ण ने हमको कंस क्यों कहा, तो हमको आपने राधा क्यों कहा, मैं राधा हूं। तो कृष्ण इसी सब का स्मरण करते हैं, तुम्हारा यह व्यवहार ऐसा क्यों, हमसे न बोल रही है न चल रही है न कुछ कर रही है, इस प्रकार से गंभीर मान में खड़ी है, यह तुम्हारा आचरण कैसा है, बोलो तो सही। कृष्ण कभी कभी उनका गूढ़ भाव देख करके मान समझ नहीं पाते, पूछते हैं मधुमंगल से इसके गूढ़ भाव कैसे समझे, वो बड़ा चतुर है, वो कोई ना कोई बहाना निकाल करके और कहता है ये ऐसी बात। इस प्रकार से और कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे कपड़े मेरे खींचते हैं और कभी कभी रोते 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 आंखों से उनका तकिया और बिस्तरा सब कुछ, कभी कभी बड़े प्रेम से ललिते ललिते विशाखे हे राधे अब क्षमा करो ऐसा अपराध नहीं करूंगा। इस प्रकार से इसलिए ब्रज की सभी बातें ये कृष्ण के द्वारा ही मैं जानती हूं, कितनी कोमल हृदय के ब्रजवासियों के प्रति उनकी कितनी प्रीति मैं वर्णन नहीं कर सकता। और आप कहते हैं कि निष्ठुर है, वे निष्ठुर कदापि नहीं हो सकते। सपनाद उत्थाय शुद्धो अथरोदिता आपका स्वराइज तथा व्यंजीन मज्जान दुख शोक भार। देखो कभी कभी नींद टूट जाने पर सज्जा से उठते ही बिछौने से उठ करके बड़े आत्मसत से रोदन कर, अभी स्वप्न भी दो तीन तरह के होते हैं, एक तो गंभीर और दूसरा होता है क्या, स्वप्न बंद हो गया किंतु भाव अभी स्वप्न का भी है पूरा टूटा नहीं। उस अवस्था में ऐसे ही कुछ बातें अनाप स्वभाव प्रलाप हो, तो वैसे ही कृष्ण बिछौने से उठ करके शैया त्याग करके बड़े आर्थ वृंदावन की ब्रज की गौओं की माताओं की ललिता विशाखा चंद्रावली और राधा की यादें आ जाती और बड़े आर्थ सच से रोने लगे और उनकी रोदन की ध्वनि सुन करके हम जितनी उनकी महिषियां हैं रानियां हैं पत्नियां हैं शोक सागर में निमज्जित, कोई सांत्वना दे नहीं सकती उनको, कैसे उनको स्वस्थ करें, हमारे पास इसका ऐसा कोई भी बुद्धि नहीं जो थोड़ी देर के लिए उनको रोते 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 आंखें सूज जाती, आज की तो बात देखो, आज न जाने क्या उन्होंने स्वप्न में देखा, अव्याप दृष्टा किमपि स्वप्न स्वप्नम निशि, आज रात में न जाने कैसा उन्होंने स्वप्न देखा, और कुछ करके क्रंदन करते करते अपने बिस्तरे पर लेट गए हैं और अपने मुख को अपने उत्तरीय से ढककर निद्रित की भांति अभी लेटे हुए रो रहे हैं अभी। हाय हाय, अभी तक उन्होंने हाथ मुख भी नहीं धोया, कलेवा भी नहीं किया, दिन काफी चढ़ गया। इस तरह से रुक्मी रोहिणी मैया को और सब लोगों को बता रहे, ये तो निद्रित अवस्था। अब इसके बाद में सत्य भामा कहेंगे। हाँ बोलिए, यू कर अभी याद नहीं तो आधा ये बोलते हैं, अभी 30 मिनट हमने बोला। मथुरा के बहुत से लोग आए हैं, बहुत से।
So, now I'm giving words of Brahmi Maya, who is being known to speak. She is Bhishmaka Nandi, the daughter of King Bhishmaka. So she is very, very, very deep person. And she stays with Krishna day and night. And because of this, so much she knows his heart. And she also knows about Braj. How does she know about Braj? Because Krishna, directly or indirectly, he tells her. Even in his sleep. So, that means he's explaining. Oh, Rajini, why are you telling that Krishna is cruel? Don't you know that Krishna is always, even at night, when she calls him Arya Putra, means his character is very good, very sophisticated and good behavior. When Arya Putra, Krishna, is sleeping at night, then he becomes absorbing bhav. Why? He sees so many dreams about Vrindavan. And being absorbing bhav, he talks about his mother, his friends, his cows, with so much love. What do you mean? What do you speak of? Speaking about Mother Yashoda, Nanda Maharaj, his friends of gopis. Even he calls out, hey Kalikundi, hey Vishangi, hey Padmagandhi. He begins to utter individually the names of his cows. What do you speak of cows? Even the cows, he calls them by name. Sometimes in his dreams, he begins to speak while he's sleeping. And he says, hey, Sikam, where are you? Come on. Sometimes he calls Madhu Mangal. Oh, Madhu Mangal, where are you? Sometimes in his sleep, he says, oh, mother, give me makhana roti. Give me some bread and butter. Yet I want to eat some more. Why? Oh, so I will grow up to be big and strong. Sometimes in his sleep, Krishna is looking for his flute. And sometimes he stands in a posture like this. Krishna is standing in the Trimanga, Trimanga room, threefold bending form. Sometimes Krishna, he says, oh Chandravani, how is your behavior? What is your nature? Krishna speaks in this way. And in his sleep, Rukmini is saying that he catches my cloth and pulls my cloth. Oh, Chandravali, how is your behavior? Why? Because Chandravali's mood is very, very deep. Sometimes if Krishna is met with another gopi and comes to meet with Chandravali, even there are signs on his body that he's met with someone else. But whether or not Chandravali is doing man, it's very hard for Krishna to understand. Because man, the contrary mood, is very, very deep in the heart. Well, just to see this mood, sometimes Krishna comes to Chandravali and says, oh, Radhe, how are you? And then Chandravali will reply, oh, Kamsa Maharaj, how are you? Krishna will say, Kamsa, why are you mentioning Kamsa Maharaj? Kamsa Maharaj is not here. And then she will reply, then why are you mentioning Radharani? So the mind is very deep. So Krishna is missing this so much in his dreams, meeting with Chandravali and catching the cloth of Rukmini. I said, oh, Chandravali, how is your behavior? Sometimes Krishna will also put this question to ask Madhu Mangal, oh, how can I understand these deep moods? She's then Rukmini is saying, sometimes when he's sleeping, he catches my cloth. And pulling my cloth, he's weeping and very lovingly going, oh, Lita, oh, Shaka. Sometimes he says, oh, Radha, please forgive me. I've made such an offense. I promise I'll never make such an offense like that ever again. So, Krishna has so much love for the Vrijavasis. Why are you telling that he's a cruel person? In his sleep, he's weeping and loudly and taking deep breaths. And hearing the sound of Krishna's crying and seeing how he's absorbing bhava, then all the queens of Dwarka, they become immersed in an ocean of lamentation. They begin to lament bitterly and they think to themselves, what can we do? What can we do? But they have no intelligence to be able to rectify or solve this situation. Even today, Krishna is grieving and weeping this way, and he's lying and covering his face with a cloth, and he's not done any of his daily duties so far. So hearing all these things from Rukmini, then Sakti Mama, she became inspired and she wanted to speak something. So we'll get from the Lord's mouth to do it.
Rukmini ji, badi gambhir buddhi ki, badi udar bhi hai. जो कुछ कहा गोपियों के प्रति आदर भाव से कहा, उनको सापत्नी भाव गोपियों के ऊपर में नहीं था, प्रति के साथ उन्होंने कहा और उनकी जितनी प्रशंसा है उस प्रशंसा के साथ में कहा कि कृष्ण उनको आदर करते हैं, इसलिए उनको मान नहीं हुआ। किंतु इन सब बातों को सुन करके वो सत्यभामा जी को कुछ ईर्ष्या गोपियों के प्रति, कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके और उनके प्रति इतनी प्रीति करते हैं, इसलिए इस भाव को वो सह न सकी और सुन करके कुछ ईर्ष्या भाव से कुछ कटाक्ष करते हुए कुछ क्रोध प्रकाश करते हुए सापत्न भाव के अनुसार में कहने लगे। सापत्न भाव माने क्या? एक किसी पुरुष को दो पत्नियां हैं, कृष्ण एक को आदर करेंगे तो दूसरी मान कर बैठेंगे और उसको जरा सम्मान देंगे तो ये मान कर। गोपियां कहती हैं कि मथुरापुरी में तुम्हारी लाखों जादुओं की पत्नियां हैं, पर दिन भर रात भर यही मनाया करो जीवन भर। तो इस तरह से ईर्ष्या से वो कहने लगे, अरे भामिनी, भामिनी मैंने यहां पर बहन, अरे बहन, ये क्या आप प्रलाप बक रही हैं? प्रलाप उनके लिए रुक्मिणी के लिए करी, आप क्या ये प्रलाप कर? अरे ये क्या वो दिन ही में जागृत अवस्था सोते हुए ये कहते हैं? ये नहीं, अरे दिन में भी ऐसा ही करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में गोपियों की बड़ाई करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं और वो इतने अभिनविष्ट हो जाते हैं उस भाव में, तादात्म्य भाव में आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं द्वारकापुरी में हूं और ये हमारी रानियां हैं। उस तादात्म्य भाव से जैसे मानो गोपी जैसी जागृत समाधि में वो है और समाधि में हम लोग कहते अरे राधे, अरे ललित, ये जागृत समाधि देवता लोगों की जैसी समाधि नहीं, इसलिए ये प्रभु के क्या केवल निद्रा में ही नहीं जागृत अवस्था में भी। मन ही मन में वो उन गोप गोपियों की, गायों की, ब्रजवासियों की, चंद्रावली और श्रीमती राधिका प्रभृति की बातों को स्मरण करते निद्रित जैसे ही वो मन भाव आविष्ट हो करके वो कहते हैं, अरे भगनी, हम लोग तो नाम मात्र की इनकी भाग्या है, किंतु इनका हम लोगों के प्रति तनिक भी स्नेह नहीं है, हम तो इनकी दासियों की दासी होने, गोपियों की दासियों के प्रति भी तो कृष्ण को इतना प्यार है, हम लोगों को तनिक भी कोई प्रीति नहीं है। वास्तव में हम लोग ब्रजवासियों की, ब्रजरमणियों की दासी होने के भी योग्य नहीं है। वो दासियां भी उनकी पुलिंद कन्याएं उनकी जितनी प्रिय है, क्योंकि गोपियों की चरण रज को वो धारण करते हैं। तो हम लोग तो ऐसे हैं नहीं। यहां पर सनातन गोस्वामी जी का ये भाव है कि मिलन और विरह दो स्थितियां होती हैं प्रेम की। मिलन में बाहर से मिलन होता है और बाहर की स्मृति होती है, अनुसंधान रहता है। और विरह में क्या होता है? विरह में सारे उनके लीला चरित्र का स्मरण उनके हृदय में हो, मानो मिल रहे। इसलिए विरह में एक प्रकार का आनंद है। मैंने एक दिन बतलाया था, सीता जी लंका, रावण के लंकापुरी में और शोक वाटिका के बीच में बैठी हुई, बाहर पेड़ के और झक 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 करके वर्षा हो रही है और उसमें बैठे हुए आंख बंद है, सोच रही है, भूल गई कि मैं लंका में अशोक वाटिका के नीचे हूं। क्या सोच रही? कहो, मेरा जब स्वयंवर होने का था तो राम बगीचे में मिले, फूल चुनने के लिए आए अपने गुरु जी के लिए पूजा के लिए, और मैं भी देवी की पूजा करने आई थी, दोनों आंखें चार हुई। राम हृदय में मेरे प्रति कितना उल्लास हुआ और मैं तो अपना सब कुछ भूल गई। गोपियों ने पकड़ करके घर लाया और राम की क्या दशा हुई? लक्ष्मण जी से बोले, भाई मैं बहुत अपवित्र व्यक्ति हूं, मैं दशरथ नंदन जिसमें मर्यादा का पालन हूं, आज मैंने मर्यादा का भंग कर एक किशोरी लड़की के प्रति हमारी भावना ऐसी क्यों हुई? लक्ष्मण जी ने समझाया, मैं जानता हूं आपको, आपकी कभी भी मर्यादा हानि नहीं हो सकती, लोक व्यवहार के प्रतिकूल आप कर नहीं सकते, हमको तो ऐसा मालूम रखे ये आपकी पत्नी बनेगी, मर्यादा नहीं। अब थोड़ी देर के बाद में महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार में बड़े बड़े महाराज धीराज सब आए और धनुष उठाना चाहा किंतु नहीं उठा सके। एक साथ में सहस्त्र हजारों बड़े बड़े राजा लोग मिलकर के उसे नहीं उठा। जिस धनुष को सीता जी बाएं हाथ से उठा करके अब दाएं हाथ से लोग करके उसको, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया था जो इस धनुष को उठाकर और प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसी के साथ में हम अपनी वीर धर्म परम धार्मिक अपनी बेटी का शादी कोई उठा नहीं। और उस समय राम सहज सिंह शावक की भांति मृदु गति से झूमते हुए आकर के एक सेकंड के अंदर में धनुष को उठाया और चाप जब चढ़ाने लगे तो वो टूट गया। इसके बाद में स्वयंवर में हजारों लाखों राजा राजकुमार आए और मैं तो प्रेम में गदगद होकर के उनके गले में हार दे, वो दृश्य सब आया कैसे हृदय दे रहे हैं। गोपियों ने उनके हाथ को पकड़ करके रामचंद्र जी के घर विवाह शादी हुई जनकपुर में आए। ये सब चीजों का स्मरण करते करते आंखों में आंसू आ रहे। अच्छा वो स्मरण करिए तो आनंद कितना होगा उस समय, किंतु ये है वीरह। तो वीरह में भी एक आनंद है क्योंकि भगवान की लीलाएं चिन्मय होती हैं। चिन्मय होने पर क्या होता है? कभी भी विच्छेद नहीं होता, किंतु फिर भी विच्छेद जैसा लगता है यही मिलन में ये पीरा यही मादनक भाव है जो राधिका के अंदर में क्यों कृष्ण उसी लोभ से श्री चैतन्य महाप्रभु को। यहां पर ब्रजवासियों के जो दुख की बातें बतलाई गई है ये उसी का अनुरूप है। उनको भीतर से कुछ विरह में भी आनंद है। गोपियां वहां पर श्रीमती राधिका जी प्रेम में विवश होकर के विरह में मूर्छित हो जाती। उस समय सारी ब्रज की लीलाएं उनको याद आती है। कृष्ण के साथ रहना बोलना कृष्ण का उनको मनाना सम्मान भंजन करना सभी याद। और फिर जब वो टूट जाती है समाधि तो फिर इस तरह का ये हमारे सनातन गोस्वामी जी इन दोनों विरह और मिलन के स्वरूपों को प्रकरण रूप में उपस्थित करते हैं। गोपियों का विरह कैसा है साधारण आदमी कैसा करेगा वो विचार करेगा इसके दृष्टिकोण से पद्मावती के दृष्टिकोण से और दूसरे इन गोपियों को।
चलो so now after hearing the comments of good meaning saying that Krishna he is not cruel, he is very soft hearted because even during the night in his dreams he is absorbed in remembering the classes. Now Sati Bhava she is about to speak and give her the comments on the comments of good meaning. We know that good meaning is very very generous and liberal to God and her intelligence is so profound. And when she was speaking and describing the gopis of Vrindavan, at that time she spoke with a very respectful mood towards them. And she had no sapatna bhav. This means she glorified the gopis. Why? If Krishna has, she has so much respect for Krishna, so she will not do man. But Satya Bhava, she could not tolerate the glorification of the gopis spoken by Rukmini. And therefore, some jealousy came. And she began to manifest some anger. And she showed sapatna bhav. What is sapatna bhav? If one man has two wives, and on one occasion he gives respect to one wife, then the other wife, she has a mood of rivalry. And she becomes jealous. And she does man. This is called sapatna bhav. So this sapatna bhav, it is not in Rukmini, but it's present in the heart of Satya Bhava. So then Satya Bhava began to speak. Say, are you Bhamini? Oh my dear sister, what are you saying? You are telling that Krishna, he remembers the brief baskets during his sleep, during the night, but actually, even during the day, he's completely absorbed in them. During the day, he becomes so absorbed that he forgets that he's even in Dwarka. And he enters into Jagrat Samadhi. That means Samadhi, but while he's awake. Usually if someone goes into Samadhi, then they become externally senseless. They cannot identify or understand what's going on. But Krishna, being awake and at the same time completely absorbed in trance of remembrance of Raj. So even during the day, he's in Jagrat Samadhi and he calls out, O Radhe, O Lalita. And he remembers, absorbed in mood, the gopis and gopis, the cows, Chandravali, Shrimati Radhika. He remembers all gopis. Then Sati Bhava, she gave her a very strong conclusion. She said to Rukmini, we say that we are the wives of Krishna, but we are the wives of Krishna in name only. Only by name. Why? Because though we are his wives in name, he has no such affection for us. He has no affection at all. The affection that he keeps for gopis, he has no such affection for us. What to speak of gopis? Even the maid servants of the maid servants of the maid servants of the gopis, he has more affection for them than for us. Or what to speak of maid servants of gopis? Even for Pulithi Kanya, the aborigine girls who lived in the forest in Brahmananda. So, when Shri Gurudev, after describing his words of Satyabhava, Gurudev is now deliberating on the mood of Srila Sanatana Goswami. Srila Sanatana Goswami, his conception is that praying has two sides, Milan and Virabhu, meeting and separation. So, at the time of meeting, then the meeting together, externally, they're meeting together, but in the heart, something is lost. But at the time of separation, what happens? All the pastimes of Krishna, they fill the heart. So, Srila Prabhupada is giving an example of Sita Devi. When Sita had been stolen away by Ravan, and she was kept in Lanka, and she was staying in the Ashram Vatika, at that time, she would sit beneath the tree, and she would close her eyes. And
the rain was going on.
Rain was falling down, and with her eyes closed, she would completely forget where she was. And she would say, "Alas, aho, what happened during at the time of my Swayamvar?" Before that time, then Ramchandra, Lord Ramachandra, his guru, said to him, into a garden to pick some flowers. And Sita also, at the same time, unknowingly, she came to that same garden to pick flowers to do daily puja. And at that time, by chance, Lord Ram, he saw Sita for the first time, and their two eyes met with each other. So she's sitting beneath the tree in the rain, eyes closed, and remembering how much blast, how much joy happened at that very moment when their eyes closed met together. What kind of vikar, transformations came in the heart of Lord Ram? He never experienced before in his whole life. So that time, Lord Ramchandra, he turned to Lakshmanji. He said, "Oh my brother, I've become apavitra. I've become impure. How is it possible? I am Dasarath Nandan. I am the son of the great king Dasarath. And I observe all my dhyana, all etiquettes in my life. But what kind of mood, what kind of feelings came in my heart when I saw this Kishori? Oh, I am ashamed." So then Lakshman said, "No, you cannot do anything wrong. You always observe Marjada. And therefore, you should accept this young girl as your wife."
No. Oh, I know that in future.
In future,
she will be your wife.
So he said, "You cannot do anything wrong. I know that from this. Because you cannot do anything wrong, it seems that even to this young girl, she must become your wife." So then later, Janak Maharaj, according to his vow, he made one assembly. And many, many kings came there. And in that assembly, he kept one huge bowl. And this bowl was so heavy that even thousands of people together, they were unable to lift it. And he said, "If a hero can come, who can lift this bowl? Only he can marry my very pure and religious daughter." So, Sita Devi, who could be qualified to marry Sita Devi, even when Sita Devi was young, sometimes she would be cleaning, and to clean the dust underneath the bowl, she would lift her left hand and clean underneath. Very easy. So who can be qualified to be a husband? Someone must be able to at least lift this bowl. So many heroes came there, but Sita Devi, being sitting beneath the tree in Ashok Vatika, she's remembering how Lord Ram came there very quickly, like a lion, and he easily picked up the bow and strung the bow, and even if he broke that bow. So then, at that time, in front of thousands of kings, then Sita Devi very lovingly, she took a garland and kept the garland around the neck of Lord Ramachandra.
So he was so happy, and that she could not keep garland in the neck of Ram out of happiness. And then so many Shakis helped her and took her hands in their hands and they.
So when Sita Devi, she's staying in Vatika, she's remembering all these things, and feeling so much separation. But what is this separation? This separation is ananda. It is full of joy. Because this lila is chinmay lila. Chinmay means spiritual lila. But it has a special meaning, chinmay. That it's transcendental.
There should be no shok, dukkha. But these are what? These are the vikar of praying. So never it can give so much pain or unhappiness.
So because this lila is transcendental, and no vichay, it is undivided. They cannot make separation, pain, and all of these things. So, and in Srimati Radhika, Radhika, when she meets with Krishna, even at the time of meeting, then so many separation moods come. And she experiences Madanakya Mahabhava. Because Krishna was very greedy to understand this Madanakya Mahabhava, therefore he appeared in Sri Chaitanya Mahaprabhu. Which this Madanakya Mahabhava has separation at the time of meeting.
No.
So then, Krishna, being Voka, he remembers Srimati Radharani when he's in Samadhi. So Srimati Radhika, when she's in Vrindavan and feeling separation from Krishna, at that time Radhika goes into Samadhi and experiences meeting with Krishna. But when the Samadhi breaks, at that time she begins to weep. So how is the Viraga of Gopis? Ordinary people may think that there's pain in this. But actually, the ordinary people, they see from which perspective? Their perspective is like the perspective of Padmavati, the mother of Kamsa. Completely wrong understanding of the nature of pain and the nature of Rajalila.
Kalme shabhe dilli jaram doctor ko dikhlane ke liye tune kal main yahan nahi laut sakta, parso laut tomorrow I'm going to Delhi. And I may return up day after tomorrow. So you can continue this katha. You can rasan. So, ek kirtan sunao.